ضیاء الحق کے گروہ نہیں، اب میں اس کے لیے سارے بعد میں استعمال کروں گا ضیاء الحق گروپ، اصطلاح استعمال کروں گا. ویسے تو ضیاء الحق گروپ ابھی بنا ہوا ہے، ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق اس کو لیڈ کر رہا ہے، ایک سیاسی گروپ بنا ہوا ہے ضیاء الحق گروپ مسلم لیگ کا. اس سے میں جو ٹرم استعمال کروں گا ضیاء الحق گروپ وہ نہیں ہے جو آج اعجاز الحق جس کو لیڈ کر رہا ہے، بلکہ ضیاء الحق گروپ سے مراد ضیاء الحق کے زمانے کا گروپ، اس زمانے میں جو گروپ بنا تھا جس کو خود ضیاء الحق لیڈ کر رہا تھا اور جو خفیہ ایجنسیوں کے ایما پر وجود میں آیا اور ان کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا. اس گروپ میں نمایاں طور پر جو کردار تھا وہ ایجنسیوں کا ہی تھا، لیکن اندرونی اور بیرونی دونوں ایجنسیاں، پاکستانی ایجنسیاں بھی تھیں اور بیرونی ایجنسیاں بھی اس کے اندر ملوث تھیں، اور سب سے بڑھ کر سی آئی اے. پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ جہاد کے نام سے احساس بیدار کیا انہوں نے، لہذا جہادی دو گروپ جہادی بنائے گئے تھے، ایک داخلی جہادی اور ایک بیرونی جہادی. انٹرنل جہادی وہ گروپ تھے کہ جو ایسے فرقوں کو ختم کریں یا ان کے اندر کاروائیاں کریں جو اس جنگ میں نہیں کچھ کر رہے یا رول نہیں ہے ان کا، مثلا ان کے اپنے بقول، یا نہ صرف یہ کہ اس جنگ میں ہمراہ نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرا راستہ سوچ رہے ہیں یا طے کر رہے ہیں، یا احتمال ہے کہ کسی دوسرے راہ پر چل نکلیں، جن میں سر فہرست انہوں نے شیعہ کو شمار کیا کہ شیعہ نہ صرف اس جنگ میں وہ اپنے ہمراہ نہیں سمجھتے تھے اس افغانستان کی جنگ میں، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ شاید ایران کے لائن پر ہے اور ایران کی لائن پر چلتے ہوئے، اس خط پر چلتے ہوئے ممکن ہے کسی وقت یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے. اس لیے ایک داخلی اندرونی جہادی گروپ تشکیل دیا گیا جس کا کام فقط شیعوں پر حملات کرنا تھا، اور ایک بیرونی جہادی گروہ تھا جس کا کام افغانستان میں اور کشمیر میں کاروائیاں کرنا تھا. ان ٹریننگ کیمپوں کے اندر باقاعدہ ٹریننگ کے بعد جب شخص فارغ ہوتا تھا تو اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے داخلی جہاد کرنا ہے یا خارجی بیرونی جہاد کرنا ہے، اور اسے بتاتے بھی تھے کہ اندرونی جہاد کا معنی شیعہ پر اٹیک کرنا ہے اور بیرونی جہاد کا معنی افغانستان یا دوسرے کسی بارڈر پر جا کے آپ نے کاروائیاں کرنی ہیں. سپاہی صحابہ جس میں سر فہرست ہے، اور بھی گروپ تھے لیکن سپاہی صحابہ ایک نمایاں گروپ انہوں نے بنایا اندرونی جہاد کے لیے. اس ان کے کنٹرول سے باہر تھے اتفاقات، باقی ہر چیز پر ان کا ہولڈ تھا، اور اتفاقات نے ان کو کچھ ضربیں لگائیں. ان میں سے ایک ضیاء الحق کا چلے جانا، کہ یہ بھی ایک الگ داستان ہے کہ کیوں ضیاء الحق کو ہٹایا گیا. باہر کے ضیاء الحق کے جانے سے ان کی کمر ٹوٹ گئی. بعد میں ضیاء الحق کے جو سیاست کو جاری رکھنے والے تھے، کچھ عرصہ انہوں نے اسی پالیسی پر کام کیا افغانستان کے حوالے سے، لہذا وہ کیمپ بھی باقی رکھے، وہ گروپ بھی باقی رکھے، وہ پالیسیاں بھی باقی رکھی کچھ عرصہ تک، لیکن مشرف کے اقتدار میں آنے سے وہ سارا نقشہ بدل گیا جو ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر. مشرف کے آتے ہی مشرف نے یو ٹر لیا، یعنی 180 درجے الٹ کام شروع کر دیا. یہاں بھی مشرف نے نہیں کیا یہ سب کچھ، جس طرح ضیاء الحق سے کروایا گیا وہ سب کچھ جہاد، اور اس کو ملوث کیا گیا افغانستان جنگ میں. اب یہ ہوا کہ ایک اور جرنیل، وہ بھی غیر قانونی طور پر اقتدار میں آیا، اس کو بھی اپنے کمزور اقتدار کو پائیداری دینا تھی، استحکام دینا تھا، بالکل ایک جیسے حالات تھے. اب کمزور ترین شخص اندر سے بھی، ملک سے بھی حمایت نہیں ہے، باہر سے بھی نہیں ہے، حکومت چونکہ کمزور تھی اس کو حمایت کی ضرورت تھی، عالمی حمایت کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی، لہذا وہ ہر موقع کی تلاش میں تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھے سپورٹ کرے اس وقت، جائز یا ناجائز. اسے یہ سگنل ملے کہ اگر یہ کام کرو تم جو ہم چاہ رہے ہیں تو پھر تمہاری سپورٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور 9/11 کا ڈرامہ جو رچایا گیا اس کے بعد ایک نئی یلغار پھر شروع ہوئی. اب جو امریکی پالیسی تھی وہ اس کی الٹ تھی، اب یہ تھی کہ اس جنونی جہادی احساس کو ختم کیا جائے اور اس کے بجائے لیبرل و سیکولر احساس پیدا کیا جائے. اس حکمت عملی میں ضیاء الحق گروپ، چونکہ وہ دوہرا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا، ضیاء الحق گروپ زیر زمین چلا گیا. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ضیاء الحق گروپ کو، ज़ियोला ग्रुप में अर्ज किया कि खुफिया एजेंसियां थी टॉप पर, उसके साथ साथ मजहबी ग्रोह थे और तीसरे नंबर पर कुछ सियासतदान थे। इन्होंने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ के दौर की 10 साल कार्रवाई और जनरल ज़ियाउल हक के दौर की 10 साल कार्रवाई में दोनों एक ही नजरिए के तहत हुई हैं और एक ही ग्रोह ने किए हैं, लेकिन इन्होंने जब मुवाजना किया नतीजा ये हुआ कि इनका ये फैसला था कि ज़ियाउल हक के जमाने में हमें पैसा भी मिलता था, इज्जत भी मिलती थी, हमारी शान में कसीदे लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, आलमी अखबार पाकिस्तानियों को बहुत सराहते थे। उस जमाने का अगर रिकॉर्ड निकाल के आप और चेक करें, इंटरनेट पर है, अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान एक बेनजीर मुल्क था, पाकिस्तान बेमिसाल मुल्क बना हुआ था और पाकिस्तानी क्योंकि जो खदमात थी वो दुनिया में बहुत अजीब तरह से पेश की जाती थी। ये जो जासा आलमी मीडिया बना रहा था, इस वक्त इन्होंने फिर अहमकाना फैसला किया है, फिर दोबारा तीसरी दफा हिमाकत जो अभी मौजूदा जमाने में कर रहे हैं वो ये कि अभी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिर ज़ियाउल हक ग्रुप को जिंदा किया जाए और ज़ियाउल हक ग्रुप की पॉलिसियां आज इनको अच्छी नजर आ रही हैं। इस वक्त दोबारा ज़ियाउल हक ग्रुप फिर जिंदा हुआ है और अब बहुत खतरनाक गेम करने जा रहे हैं ये। आपने देखा कुछ दिन पहले लाहौर के अंदर दिफा पाकिस्तान प्रोग्राम हुआ मीनार पाकिस्तान में, दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने करवाया। ये दिफा पाकिस्तान कमेटी थी पहले, जो अब अपग्रेड होकर दिफा पाकिस्तान कौंसिल में बदल चुकी है। इसकी तरकीब अगर देखें आप तो ये बिल्कुल 100% वही ज़ियाउल हक की तरकीब है, ये ज़ियाउल हक ग्रुप है जो फिर मंजर आम पर आया। इसके अलावा इन्होंने कलदम जमातें शामिल की इस दिफाई कौंसिल के अंदर, सिपाही साहबा और दूसरी चंद जमातें, 30 ग्रुप मजमूई तौर पर दिफा कौंसिल में शामिल किए। और सबसे जो एक नुमाया तौर पर तब्दीली आई है जो उस वक्त नहीं थी अभी है, वो ये कि दो जुदा कैंप दोनों मिलकर एक मुश्तरका कैंप बन गया है। अभी जमात इस्लामी लश्कर तैयबा के साथ कश्मीर के हवाले से ज्यादा फाल थे ये लोग, अब इनको भी अफगान कैंप के साथ मिलाकर, यानी पूरा ज़ियाउल हक ग्रुप जो दोनों महाजों पर था वो दोनों मिलाकर अब एक ग्रुप तश्कील दे दिया गया है दिफा पाकिस्तान कौंसिल के नाम से, जिन्होंने आगाज मीनार पाकिस्तान से किया। मीनार पाकिस्तान में जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम नहीं होते, वो सिग्नल होते हैं। मीनार पाकिस्तान में जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम नहीं होते, वो सिग्नल होते हैं। अहले फहम समझते हैं पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैसेज होता है, वो वहां प्रोग्राम की कारकर्दगी सिर्फ एक प्रोग्राम के तौर पर नहीं समझी जाती, बल्कि जो भी मीनार पाकिस्तान में प्रोग्राम करना चाहता है इसका मतलब यह है कि ये अब आगे आना चाहता है, इसको लाया जा रहा है आगे। मीनार पाकिस्तान एक कह लें लॉन्चर है जहां से किसी को फायर किया जाना है आगे। अब ये एक ग्रुप ज़ियाउल हक जिंदा किया गया। दूसरा सियासी तौर पर आप तवज्जो फरमाएं कि नई सूरत हाल बनती जा रही है कि धड़ाधड़ लोग सियासी पार्टियां छोड़कर एक नई पार्टी में शराकत के लिए दौड़ रहे हैं और दोनों का आगाज एक जगह से होता है, मीनार पाकिस्तान से ही दोनों का आगाज होता है और दोनों के तेवर एक जैसे हैं, दोनों का तरीकाकार एक जैसा है। ये दोनों दो विंग हैं दर हकीकत, एक सियासी विंग है और एक नजरियाती विंग है या जिहादी विंग है। इस वक्त इन 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 एस्टेब्लिशमेंट के या गैर जिम्मेदार मुक्तदिरा ने जो सोचा है वो ये कि ज़ियाउल हक का तजर्बा इनको अच्छा लगा है। यहाँ अहम नुकता ये है अजीज़मान कि मुल्क के लिए बहुत खतरनाक ये इकदाम है, बहुत खतरनाक। माई के नाम इसका दिफा पाकिस्तान है, लेकिन ये दिफा पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये दर हकीकत दफ़ पाकिस्तान है, जिसे पाकिस्तान को ही ख़त्म करना है इन्होंने। और कलदम जमातें और उनके परचम और उनके सरबराहान और उनके अजाइम और सब इनके साथ शामिल होकर शिया के लिए भी एक सिग्नल है इसके अंदर कि जिस तरह पहले शिया मुतवज्जे नहीं थे कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और हमारे लिए क्या सोचा जा रहा है। ताकि ये जो खतरात मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शिया हैं इस वजह से इनके ऊपर भी ये खतरात मंडला रहे हैं, ताकि उस गफलत में जैसे पहले मारे गए इस तरह से अब ना हो, भरपूर तरीके से आगाही के साथ, होशियारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करें। जाहिर है ये आगाज़ है इनका, अभी दूसरे शहरों के अंदर ये काम होगा और फिर अमली सूरत इख्तियार करेगा। अब सियासी एक तरफ से ड्रामा जो रचा हुआ है, मुल्क के अंदर तब्दीली की बातें हो रही हैं, सियासी ग्रोह बन रहे हैं, सियासी तबादले हो रहे हैं, हवाल हो रहे हैं, ये बात चीज़ें ताज़ब और मसनू होती हैं कौम की तवज्जो हटाने के लिए। असल जो कुछ होने जा रहा है उससे लोगों को नज़रें हटाने के लिए एक मसनू मसला इशू छेड़ा जाता है, ताकि लोग इसके अंदर सारे मुलव्वस हो जाएं और ये अपने आसूदा सहन में, आसूदा माहौल में, आसूदा ग्राउंड में अपना काम बड़ी आसूदगी के साथ अंजाम दें और चले आगे बढ़ें। इन्होंने शिया को जो पॉलिसी बताई गई वो लाश उठाना, दफनाना और उसके लिए मजलिस कराना है और उसके लिए चंदा जमा करना, ये स्ट्रेटेजी थी शिया की, जो नहीं करते नजदीक आने की, लेकिन इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब नफ्स कुंद होती है, या इंकलाब इस्लामी की दायमन नब्ज चेक करके रहते हैं किस वक्त इंकलाब किस हालत में है, और जिस दिन नब्ज चेक करके उन्हें एहसास हुआ कि अब मुनासिब वक्त है, ये मुर्दा हो चुकी है नब्ज या कुंद हो चुकी है या नहीं चल रही, उसी दिन वो आखिरी वार करेंगे। लेकिन इंकलाब इस्लामी में ये है कि जब भी उन्होंने नब्ज चेक किया पहले से तेज तर धड़क गई थी वो, इस वजह से उन्हें मायूसी होती है। हमारी नब्ज भी चेक की उन्होंने, आगाज में जो इत्तफाकात हुए, हवादिस हुए, ये नब्ज चेक करना चाहिए हमारे, लेकिन उसने कोई अक्सर अमल नहीं दिखाया हमें, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरी बार उन्होंने कर दिया और अपने तई उन्होंने शिया को मलिया मेट कर दिया, जमीन गिर कर दिया। लेकिन ये दुश्मन का ख्याल है, खुद कौम को नहीं बावर करना चाहिए। हमने जरबे खाई है, हमने बहुत कुछ मुश्किल का सामना किया, लेकिन ज़हनी तौर पर मगलूब ना हो। अगर अमली तौर पर हमारा नुकसान बहुत हुआ है, हमें उसका इकरार है, लेकिन वो नुकसान बायस न बने कि हम ज़हनी तौर पर भी मगलूब हो जाएं और एक मगलूब कौम बनकर इस कौम इस मुल्क के अंदर रहेंगे। और सबसे बढ़कर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कि जब इजहार वजूद करती है एक कौम, जब अपना इजहार वजूद करती है, नज़र आती है कि ये है, उस वक्त दूसरे अपनी राय बदलते हैं उसके बारे में। जिन जमातों ने इनके साथ वायदा करके और वोट लेने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन कलदम जमातों के साथ अपना गठजोड़ किया है और इनको मैदान दिया है, ग्राउंड दिया है कि ये फिर ज़मीन के ऊपर आए और सतह ज़मीन पर आकर अपना इजहार वजूद करें, इजहार वजूद ही सिग्नल होता है अगले मराहिल के लिए, जो शिया नहीं कर पा रहे हैं। शिया इजहार वजूद से डरता है, अभी इजहार वजूद नहीं करेंगे तो वजूद ख़त्म हो जाता है। ईमान के लिए शर्त है कि उसको जाहिर करो, अगर आप ईमान जाहिर नहीं करेंगे ईमान ख़त्म हो जाएगा। एक तो आपका ईमान कबूल नहीं है, ईमान दिल में रखना काफ़ी नहीं है, ईमान का इजहार करो, इजहार ईमान जो से ईमान है। अजीज ईमान, इस वक्त इन्हें एक लिहाज से खौफ भी है कि आलमी सतह पर बेदारी की लहर में तशय्यो का जो किरदार है इस्लामी बेदारी के अंदर, उससे खौफज़दा भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी तशय्यो के निस्बत मुतमईन भी हैं कि ये उस तरीक़ के हमरा नहीं है, ये उस फिक्र की राह पर नहीं जा रहे हैं, ये उस राह के राही नहीं है। लिहाजा जब नब्ज चेक करने आए तो हम जाग रहे हों, महसूस होकर जाग रहे हैं। अगर सोए हुए हुए जब नब्ज चेक की हमारी, तो फिर अगला कदम मौत का इंजेक्शन है कि सोए हुए हैं, नब्ज थमी हुई है, इनको ख़त्म ही कर दो। लेकिन हम अपने अंदरूनी छोटे छोटे मौजूआत में ज़्यादा सरगर्म हैं, छोटी सेटअप में, छोटे ग्रोह में ज़्यादा सरगर्म हैं और उफुक की तरफ निगाह नहीं है कि वो जो आंधियाँ सब के ऊपर छा रही हैं। हम खेमों के नीचे बैठे हुए हैं और खेमों के ऊपर घटाएँ छाई हुई हैं। इकबाल किसी खेमे के नीचे नहीं थे, इसलिए इकबाल को आसमान भी नज़र आ रहा था। खेमों के नीचे जो होते हैं उनको खेमा ही नज़र आता है, खेमे से बाहर नहीं आते, लेकिन जो खेमों में नहीं होता उसे उफुक नज़र आता है सारा। अल्लामा इकबाल को सारा उफुक नज़र आ रहा था और घटाई नज़र आ रही थी कि वो इकबाल नहीं फरमाता कि तेरी बर्बादियों के चर्चे आसमानों में। टेररिस्टों का मुकाबला टेररिज्म से नहीं हो सकता, तवज्जो फरमाई। बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं होता, क्योंकि बंदूक से बंदूक का मुकाबला करें तो बंदूक का कल्चर ज्यादा होता है। ये नहीं है स्ट्रेटेजी इस वक्त, इमाम खुमैनी की स्ट्रेटेजी की जरूरत है इस वक्त। इसलिए कि जब बाजों का दुश्मन प्लान करता है, मनसूबाबंदी करता है कि आपको किसी काम में डाले उतारे, अगर आप दूसरी टीम को गुस्सा दिला दें, जज्बात दिला दें, भड़का दें उसको, यानी आपकी कामयाबी। जंग सफीन में यही हुआ। जंग सफीन में शामियों ने एक तो शामी फौज के लिए प्लान किया, लेकिन उस मुशाविर ने अमीरुल मोमिनीन की फौज के लिए भी प्लान किया कि अमीरुल मोमिनीन की फौज कैसे सोचे। लिहाजा उन्होंने जो नेजों पे कुरान उठाए वो शामी फौज के लिए नहीं थे, वो अमीरुल मोमिनीन की फौज के सिग्नल थे कि ये कैसा सोचे, ये किस तरह से आए, ये किस तरह से मैदान में आए। और अमीरुल मोमिनीन की फौज की सादा लोही ये थी कि उन्होंने वैसा ही अक्सुल अमल दिखाया जैसा शामी फौज के मुशावरीन चाह रहे थे। और ये नाकाम होना चाहिए कि अगर वो आपके अगर वो प्लान बनाते हैं उब्ज़र कलदम जमातों के जरिए, दूसरों के जरिए से, तो उसमें सिग्नल है कि उसका मतलब ये है कि अब ये इस तरह से आएंगे, इतना आगे आएंगे या आएंगे। लेकिन इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो जिस रास्ते को तजवीज़ करते हैं वो बेदारी का रास्ता है, इजहार वजूद का रास्ता है। तवज्जो करें, तोप की नाकामी और हथियार की नाकामी ये नहीं हो सकती कि आप वही हथियार आप भी यूज करें। तोप की नाकामी, टैंक की नाकामी हो सकती है कि जब लोग मैदान में उतरे। इस वक्त हमने मैदान खाली छोड़े हुए हैं, जिन मैदानों में होना चाहिए हमें हमने खाली छोड़े हुए हैं, उन मैदानों में हुजूर। ये इमाम खुमैनी की स्ट्रेटेजी है, बेदारी के साथ, आगाही के साथ वहां हाजिर होना ही हमारा बहुत बड़ा इकदाम है। इस वक्त बेहतरीन अमल, आइडियल अमल ये हो सकता है इस सारी कार्रवाई के जवाब का कि शिया कौम फिर एक दफा मीनारे पाकिस्तान में जमा होकर एक सिग्नल उनको भी दे दें कि हम मरे हुए नहीं, लेकिन आया हम हैं, इस काबिल हैं, अभी कर सकते हैं इतना हुजूर मैदान में, सिर्फ हुजूरदार मैदान। खुदा शायद है कि ये जो प्लानिंग इन्होंने बनाई है, यानी शैतान ने जो नक्शा बनाया है, मकरू शैतान ने मकर किया है, वह मकर अल्लाह, अल्लाह ने भी नक्शा बनाया है, अल्लाह का नक्शा उनके नक्शों पर गालिब आ जाएगा। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। अल्लाह का नक्शा क्या है कि आप दो गुना हाजिर हो। जब एक कौम हाजिर होती है आपके मुकाबले में, लश्कर तैयार करती है, जमा होते हैं, आप दो गुना हाजिर हो। जिल्लत से निकलने का रास्ता यही है कि खुददारी और हुजूरदार मैदान। ये पैगाम हमारी तरफ से दुनिया को मिलना चाहिए, हुजूरदार सैने। मैं मिसाल अर्ज करता हूं इसकी कि दो साल कबल जब ईरान में सदारती इंतखाबात हुए, ईरान के लिए जो प्लानिंग इन्होंने की थी उस नक्शे में कामयाबी उनको हासिल हुई। वेलवेट रिवॉल्यूशन, मखमली इनकलाब का जो नक्शा था उसके मुताबिक इन्होंने बहुत कामयाब हरकत शुरू की। यानी 32 सालों में इनकलाब के खिलाफ इतनी कामयाब तहरीक नहीं चली जितनी दो साल पहले वेलवेट रिवॉल्यूशन के नाम से चली थी। ये तहरीक नाकाम कैसे हुई? सबसे बड़ा हथियार जो रहबर मुअज्जम ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया वो ये कि लोगों को हुक्म दिया कि तुम भी मैदान में हो, रोड पर हो। एक दिन सिर्फ रहबर मुअज्जम ने हुक्म दिया और सारी मिल्लत ईरान निकलकर उमड़कर मिलियंस लोग रोड पर आकर सिर्फ एक रैली निकाली उन्होंने, उसी से वो इंकलाब काबू हो गया। एक रैली ने, वही हुजूरदार सहने, एक रैली ने, एक भरपूर अवामी मुजाहरे ने सब कुछ हाथ में मिला दिया। खौफजदा होकर घरों में जा रहे थे, फिर कभी भी आज तक नहीं निकले फिर बाहर, और न जुरत करेंगे कभी निकलने की। ये जो इशारा कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि हथियार, वो इमाम ने भी यही हथियार इस्तेमाल किया था कि लोग बाहर निकले, बस امام فرماتے تھے خالی ہاتھ باہر نکلو، مسلح فوج کے مقابلے میں خالی ہاتھ بے شک، لیکن باہر نکلو تم، گھروں سے باہر نکلو تم، اندر دبک کے بیٹھے رہو گے تو ختم کر دیے جاؤ گے، باہر آؤ گے تم بچ جاؤ گے۔ ہم گھروں میں ڈر کے بیٹھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھیں گے بچ جائیں گے، امام فرماتے ہیں یہی موت ہے تمہاری، بچنا ہے تو گھر سے نکل کر باہر آؤ، اپنا اظہار وجود کرو۔ در عین حال بھی اس قسم کے مسائل کیوں کیسے حل ہوں گے کہ اس یونیورسٹی کے اندر کنسرٹ ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، اس یونیورسٹی کے اندر فساد و فاحشہ ہوتا ہے، اس میں ہر فرقہ اپنا اظہار وجود کرتا ہے، شیعہ کو حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے اجازت؟ وہ ہونی چاہیے، کیسے ہوگی یہ اجازت؟ حضور سے ہوگی، حاضری سے ہوگی، کہ وہاں پر حاضر ہو تو کچھ ہوگا، وہ اگر ہم حاضر ہی نہیں ہیں، کسی میدان میں حاضر نہیں ہیں، تو ہمیں جن جگہوں پر ہمیں حق دیا جا رہا ہے وہاں بھی ہم سے چھین لیا جائے گا، جن جگہوں پر کوئی مشکل نہیں ہے وہاں بھی ہمارا یہ حق ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اور ہوا ہے ایسے، پہلے دن ایک یونیورسٹی میں یہ حادثہ ہوا، دوسرے دن کنفرم پروگرام دوسری یونیورسٹی میں تھا، انہوں نے کینسل کروا دیا کہ یہاں بھی نہیں کر سکتے آپ، اور آہستہ آہستہ اب ساری یونیورسٹیوں میں ہوگا۔ یہ بنیادی حق ہے ہمارا اور یہ ہونا چاہیے، ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مکتب کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے فرد فرد ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے۔ یہ نبضیں ہوتی ہیں، چیک کرتے ہیں، ان نبضوں میں کند نبضیں ہو تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے، اگر یہاں پر بھرپور حضور ہو اور اس کے ذریعے سے اظہار وجود ہی صرف کیا جائے، مسئلہ سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا رائے حل کیا ہے؟ ایک بھرپور اظہار وجود، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو بھی ان شرور سے بچائے، ملت پاکستان کو بچائے، شیعہ سنی دونوں کو محفوظ رکھے، اور بالخصوص تشیع پاکستان کو، یہ جو کھڑائیں چھا رہی ہیں انشاءاللہ ان کے گزند سے خداوند تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور ان جوانوں کے اندر اور پوری ملت کے اندر وہ بیداری پیدا ہو کہ تاکہ آگاہانہ طور پر ہم اپنے وجود کو باقی رکھ سکیں انشاءاللہ۔
ہم پیروں کس کے؟ حیدر کے۔ ہم پیروں کس کے؟ حیدر کے۔ ہم پیروں کس کے؟ حیدر کے۔ ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے۔ ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے۔
ہم سب فدا ہیں۔